सप्ताह भर की क्रिकेट गतिविधियों को समेटे में हाजिर हूं इस पॉडकास्ट में संजय बैनर्जी का नमस्कार। सुनो दिल से। कप्तान जॉर्ज बटलर और एलेक्स हेल्स भारतीय गेंदबाजों पर इस कदर भारी पड़ेंगे इसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में इंग्लैंड ने उस भारतीय टीम को 10 विकेट से शिकस्त दी जिसे खिताब का प्रबल दावेदार माना जा रहा था। कहां तो भारतीय क्रिकेट प्रेमी रविवार को खेले जाने वाले फाइनल पर नजरें जमाए थे और कहां उन्हें बड़े बेआबरू होकर बाहर निकलना पड़ा। नॉकआउट में हारने का सिलसिला भारतीय टीम एडिलेड में भी नहीं तोड़ सकी। पिछले 8 साल से भारतीय टीम ICC टूर्नामेंट्स के नॉकआउट में या तो सेमीफाइनल में हारती है या फिर फाइनल में उसे शिकस्त झेलनी पड़ती है। ऑस्ट्रेलिया रवाना होने से पहले भारतीय टीम की गेंदबाजी दोयम दर्जे की मानी जा रही थी, पर इसने सुपर 12 चरण में उम्मीदों से ठीक ठाक प्रदर्शन किया। लेकिन बटलर और हेल्स ने भारतीय बॉलिंग की धज्जियां उड़ा दी। जब असली जरूरत थी तो भारतीय गेंदबाज पूरी तरह से लाचार दिखे। गेंदबाज ही क्यों, भारत के बल्लेबाजों ने भी बेहद निराश किया। पावर प्ले की कमजोरी इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल में भी बनी रही। रोहित शर्मा, लोकेश राहुल और विराट कोहली की कछुआ रफ्तार वाली टॉप ऑर्डर की बल्लेबाजी से भारत ने पहले 6 ओवर में केवल 38 रन जोड़े। भारत की हार और इंग्लैंड की जीत के बीच ये सबसे बड़ा फैक्टर था। ये दूसरी बात है कि विराट कोहली के बाद हार्दिक पांड्या ने भी अर्धशतक लगाया, लेकिन बोर्ड पर सिर्फ 168 रन का स्कोर इंग्लैंड के लिए आसान साबित हुआ। ऐसे में जब भारतीय गेंदबाजों को अपना हुनर दिखाना था तो सबके सब नाकाम रहे। न तो भुवी की और न ही अर्शदीप की गेंदें सामने वाले बल्लेबाज को डिगा सकी, न ही शमी और अश्विन कुछ फर्क पैदा कर सके। हार्दिक पांड्या ने 3 ओवर में ज्यादा रन देकर भारत की हार को और भी आसान बना दिया। टीम में अक्षर पटेल को शामिल करने का कोई भी असर दिखाई नहीं दिया। अब तक भारतीय बल्लेबाजी की रीढ़ बने रहे सूर्य कुमार यादव पर इतना भरोसा था कि सब अपनी जिम्मेदारी भूल चुके थे। आखिर सूर्य को भी कहीं न कहीं तो अस्त होना ही था। सेमीफाइनल में केवल 14 रन पर उनके पवेलियन लौट जाने के बाद भारतीय बल्लेबाजी की कलई खुल चुकी थी। कभी विराट कोहली पर निर्भरता से भारतीय क्रिकेट का बेड़ा गर्क हुआ था, इस बार सूर्य कुमार यादव पर बोझ डालना भारी नजर आया। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा अपने फॉर्म से लगातार जूझते रहे। नेदरलैंड्स के खिलाफ दूसरे मैच को छोड़कर उनकी एक भी पारी उल्लेख करने वाली नहीं थी। नेदरलैंड्स के खिलाफ भी उन्हें जीवनदान मिले। लोकेश राहुल ने पिछले 2 मैचों के अलावा हर बार निराश किया। जाहिर है सबसे छोटे फॉर्मेट में अगर प्रारंभिक जोड़ी स्कोर नहीं कर पाएगी तो मिडिल ऑर्डर हमेशा क्लिक नहीं कर सकता। इंग्लैंड के खिलाफ इस विफलता की बड़ी कीमत भारतीय टीम को चुकानी पड़ी। भारतीय टीम के चयन पर भी सवालिया निशान है। अक्षर पटेल को लगातार क्यों मौका दिया जा रहा था समझ से परे है। ना तो उनकी गेंदबाजी चली और ना ही बल्लेबाजी में मौका मिला। अक्षर ने रन तो खर्चे ही, 5 मैचों में केवल 3 विकेट निकाल सके। तमाम कयासों के बाद मौका फिर से ऋषभ पंत को ही मिला। पंत ने इस बार खुद को रनआउट कराकर जो भी थोड़े बहुत रन बन सकते थे वो भी जाया कर दिए। दूसरी ओर इंग्लैंड की टीम ने विकेट को काफी नजदीक से पढ़ा था। टॉस जीतकर पहले भारत को बल्लेबाजी के लिए भेजने से यह साबित होता है कि उनका होमवर्क बेहतर था। हालांकि कप्तान रोहित भी बल्लेबाजी की ही सोच रहे थे। मार्क वुड और डेविड मलान नहीं थे, शायद उनकी भारत के खिलाफ कोई जरूरत भी महसूस नहीं हुई। क्रिस जॉर्डन को सीधे सेमीफाइनल में मौका मिला और उन्होंने दिखाया कि वो क्या कर सकते हैं। सैम करन और आदिल रशीद पहले भी भारत के लिए चिंता की वजह रहे हैं, इस बार दोनों ने इसे और पुख्ता कर दिया। भारत इंग्लैंड सेमीफाइनल की सबसे बड़ी बात यह भी रही कि दोनों ओपनर बटलर और हेल्स ने कोई मौका नहीं छोड़ा। न केवल पावर प्ले में 63 रन जोड़े बल्कि बाद के ओवर्स में इतनी तेजी से रन बनाए कि मुकाबला 4 ओवर पहले ही खत्म हो गया। UAE में पिछले साल हुए T20 वर्ल्ड कप में पहले ही मैच में भारतीय टीम शाहीन शाह अफरीदी का शिकार होकर बाहर हो गई थी। इस बार पाक पर जीत के बावजूद ज्यादा कुछ नहीं बदला। इंग्लैंड के ज्यादातर प्लेयर्स ऑस्ट्रेलिया में बिग बैश लीग में खेलते हैं और कई तो एडिलेड को अच्छी तरह जानते भी हैं। जाहिर है इसका भी फायदा इंग्लैंड को मिला है। वैसे इस विश्व कप में भारतीय टीम के प्रदर्शन पर नजर दौड़ाएं तो साफ है कि मजबूत टीमों के खिलाफ टीम इंडिया ने निराश किया है। पाकिस्तान से आखिरी गेंद पर जीते, दक्षिण अफ्रीका से हार गए और जैसे ही नॉकआउट में पहुंचे इंग्लैंड ने काम तमाम कर दिया। जीत नीदरलैंड, जिम्बाब्वे और बांग्लादेश के खिलाफ मिली। भारतीय टीम को अब सचमुच आत्ममंथन की जरूरत है, बड़े फैसले भी लिए जाने चाहिए। भारतीय टीम अब अगले हफ्ते भारी भरकम नामों के बिना न्यूजीलैंड के दौरे पर जाएगी। बहरहाल T20 वर्ल्ड कप का फाइनल अब रविवार को पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच होगा। पाकिस्तान ने पहले दोनों मैचों में हार के बावजूद जिस तरह की वापसी की है वो उसके जीत के जज्बे को दर्शाती है। खासतौर पर सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड के खिलाफ उसकी जीत सबसे ज्यादा असरदार रही। खिताबी मुकाबले में इंग्लैंड के खिलाफ बाबर आजम और रिजवान पर जोरदार शुरुआत करने का दबाव होगा, तो शाहीन शाह अफरीदी और शादाब खान जैसे गेंदबाजों को झेलना इंग्लिश बल्लेबाजों के लिए आसान नहीं होगा। कुल मिलाकर दोनों टीमों के लिए दूसरी बार चैंपियन बनने का मौका है। और अंत में डोमेस्टिक क्रिकेट। पिछले सप्ताह घरेलू क्रिकेट में 3 टूर्नामेंट्स का समापन हुआ। वर्तमान समय में 2 टूर्नामेंट जारी हैं जबकि 2 और अगले 1-2 दिनों में शुरू होने वाले हैं। सैयद मुश्ताक अली T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का खिताब मुंबई ने पहली बार अपने नाम किया है। उसने खिताबी मुकाबले में हिमाचल प्रदेश की टीम को 3 विकेट से पराजित किया। कोलकाता के ईडन गार्डन्स में हुए इस डे नाइट फाइनल में हिमाचल प्रदेश की टीम सिर्फ 143 रन बना सकी। इसके जवाब में अजिंक्य रहाणे की कप्तानी वाली मुंबई की टीम ने 3 गेंदों के बाकी रहते 7 विकेट खोकर फाइनल जीत लिया। उधर बेंगलुरु में खेले गए सीनियर महिला T20 टूर्नामेंट का फाइनल रेलवे ने फिर जीता। रेलवे ने खिताबी मुकाबले में बंगाल को 6 विकेट से पराजित किया। गोवा में U19 महिला चैलेंजर ट्रॉफी प्रतियोगिता इंडिया सी ने जीत ली है। तीसरे स्थान के मैच में इंडिया ए ने इंडिया डी को 46 रन से पराजित किया। इस बीच डोमेस्टिक क्रिकेट की वनडे की सबसे बड़ी प्रतियोगिता विजय हजारे ट्रॉफी की शुरुआत कल से होगी। अलग अलग सेंटर्स पर होने वाले इस टूर्नामेंट में किए गए प्रदर्शन के आधार पर खिलाड़ियों को भारतीय टीम में आने का मौका मिल सकता है। अगले साल की शुरुआत में U19 महिला क्रिकेटर्स का विश्व कप साउथ अफ्रीका में खेला जाएगा। इसके लिए BCCI ने 4 टीमों की अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता भी आयोजित की है। रविवार से वाइजैग में होने वाले इस टूर्नामेंट में इंडिया ए और बी के अलावा श्रीलंका और वेस्टइंडीज की U19 महिला टीमें हिस्सा लेंगी। फिलहाल U19 कूच विहार ट्रॉफी का पहला राउंड समाप्त हो चुका है। दूसरे राउंड के मुकाबले कल से शुरू होंगे। 36 टीमों के 6 ग्रुप के पहले राउंड में खेले गए 18 में से 11 मैचों में साफ परिणाम निकले हैं। इसमें ग्रुप एफ की 3 ही मैच में विजेता का फैसला हुआ। इस दौरान कुल 24 शतक जड़े गए जिसमें 1 तिहरा और 5 दोहरे शतक शामिल हैं। इसी तरह लखनऊ में सीनियर महिला T20 इंटरजोनल टूर्नामेंट का आज तीसरा और कल अंतिम राउंड खेला जाएगा। फाइनल 16 नवंबर को होगा। टूर्नामेंट के आधार पर T20 महिला विश्व कप के लिए भारतीय टीम का चयन किया जाएगा। तो ये था सप्ताह भर की क्रिकेट गतिविधियों पर आधारित पॉडकास्ट सुनो दिल से। संजय बैनर्जी को अनुमति दीजिए। नमस्कार।